को आज के साइलेंट विजडम सत्संग में आप सबका स्वागत है। ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है हम सब के लिए मिलने का, आध्यात्मिक चर्चा करने का और अपने आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर पाने का। जैसा आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे इस ग्रुप में हर तरह के साधक हैं। ऐसे भी साधक हैं जो बहुत समय से साधना कर रहे हैं और उनके प्रश्न अलग तरह के होते हैं। हमारे पास नए साधक भी जुड़ते रहते हैं जिनके प्रश्न अलग होते हैं, और कभी कभी नए साधकों के लिए पुराने साधकों के प्रश्न हैं वो चीज़ों को थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अध्यात्म में भी जो शुरू में बताया जाता है सीढ़ी दर सीढ़ी चलना होता है। कोई चीज़ आपको बताई जाती है कि अभी जो आपको करनी है, जब आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो रही है तो आपको क्या करना है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है। फिर हो सकता है कि जो कोई साधक काफ़ी समय से साधना कर रहा हो उसको बिल्कुल उससे उल्टी चीज़ बताई जाए, उसको वो चीज़ छोड़ने को कहा जाए, या जो चीज़ एक नए साधक के लिए ज़रूरी है एक पुराने साधक के लिए उसको छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो नए आ रहे हैं उनको कंफ्यूज नहीं होना है, उनको ये अपनी चीज़ें करते हुए छोड़ नहीं देनी है, क्योंकि सत्संग में किसी के प्रश्न का उत्तर एक अलग तरह से दिया जा रहा है। ये बहुत बार हो जाता है, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको जो भी गुरु पर्सनली इंडिविजुअली आपको बताया जाता है आपके लिए वो सही है। हाँ, आप ज़रूर सत्संग में आइए, प्रश्न भी पूछिए और दूसरों के प्रश्नों के उत्तर भी सुनिए, लेकिन जो दूसरे का प्रश्न है वो दूसरे के लिए है, उसको अपने ऊपर मत लागू कीजिए। जो दूसरे को बताया गया है उसको अपने ऊपर मत ले आना, आपको जो बताया गया है करने के लिए आपको उसी पर रहना है। तो आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज जो पहला प्रश्न आया हुआ है, जैसा कि आप समझ सकते हैं ये प्रश्न एक पुराने साधक का है और बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि आई एम नॉट कॉन्शियस एंड आई डू नॉट रिमेंबर द वासनाज आई हैड इन ऑल माई प्रीवियस लाइफ टाइम्स। इफ दे आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस दिस एंड फ्यूचर लाइफ टाइम्स, वॉट कैन आई डू टू निगेट दैम। पहले हम इतना हिस्सा लेते हैं। देखिए, ये क्या होता है, साधक जब साधना करते हुए एक तल पर पहुँचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि आपके जो जन्म होते हैं वो कैसे होते हैं, वासनाओं के कारण ही हम बार बार इस मनुष्य शरीर में जन्म लेते हैं, इस मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। कोई भी योनि, हर योनि का जो जन्म होता है वो आपकी वासना के कारण ही होता है। तो अगर ये तो समझ में आ गया साधना करते हुए कि मेरे इस जन्म में अब मेरे अंदर कोई भी वासना नहीं रही है, ये समझ में आ गया, और ये भी कैसे जाना जाता है, साधना से ही जाना जाता है, हर कोई जान सकता है। जो नए साधक हैं आप लोग भी साधना करते रहो, आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि क्या मेरी कुछ वासनाएं बची हैं या समाप्त हो गई हैं। लेकिन फिर ये प्रश्न आना भी बहुत ही स्वाभाविक है कि क्या पता मैंने पहले कोई वासनाएं की हुई हों जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, जो मेरे अवचेतन मन में हों, तो क्या उनके कारण मेरा फिर से इस मनुष्य योनि में जन्म हो सकता है। और अगर मैं साधक नहीं चाहती हूँ या नहीं चाहता हूँ कि मुझे दोबारा मनुष्य योनि में जन्म लेना है, तो मैं उनके लिए क्या करूँ। देखो, इस प्रश्न को हम दो तरीके से समझेंगे, मे बी दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर अभी मेरे मन में दो तरह से जवाब देने का है। पहली बात, अगर हम इसको ज्ञान की दृष्टि से देखें, जो ज्ञान मार्ग में कहा जाता है, और मैं यहाँ पे सहारा लेना चाहूँगी गौड़पाद का। जो गौड़पाद थे वो गोविंदपाद के गुरु थे, और जो गोविंदपाद थे वो शंकराचार्य जी के गुरु थे। उनको भी ये प्रश्न पूछा गया था और उनकी जो करिकाएँ हैं उसमें एक जगह पे उन्होंने इस बात का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य यहाँ पर दो तरह के, उसको एक बताने का तरीका है, वो कहते हैं दो तरह के जो हैं तीर लगते हैं उसको, वो अपनी करिका में ये बोलते हैं, उन दो तरह के तीर। जो पहला तीर होता है वो होता है दर्द का, भौतिक दर्द, और जो हमारे संसार में जिस भी तरह के परिस्थितियाँ होती हैं वो, वो एक तीर होता है जो हम सब अनुभव करते हैं, एक हमारा भौतिक शरीर उसका दर्द और जो सांसारिक परिस्थितियों के कारण भी आता है। और वो कहते हैं कि जो दूसरा तीर होता है वो होता है दुख का, जो होता है मानसिक दुख। और वो किससे आता है? वो आता है आपकी, जब आप उसके साथ पहचान बना लेते हो, इस शरीर और इस संसार में होने वाले जो भी परिस्थितियां हैं उनके साथ जब आप अपनी पहचान स्थापित कर लेते हो तो वो हो जाता है आपका दूसरा तीर। और वो कहते हैं कि जो हम आत्मज्ञान की बात करते हैं, जब आत्मज्ञान होता है एक साधक को तो दूसरा तीर समाप्त हो जाता है उससे। दूसरा तीर मतलब जो आपका मानसिक दुख और आपका ने जो पहचान बना ली, जो आइडेंटिफिकेशन बना ली थी इस शरीर और इस संसार के साथ, वो समाप्त हो जाती है। लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि जो पहला तीर है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक ये जो चल रहा है, जो शरीर है और ये जो संसार की परिस्थितियां हैं, ये चलती रहती हैं, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता और इनको मिथ्या ही कहा गया है, मिथ्या। तो अगर मेरी पहचान ही इनके साथ समाप्त हो गई, अब इनमें क्या हो रहा है, क्या होगा, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। दुख कहाँ तक है? जहाँ तक मैंने अपनी पहचान, मैंने इसको मैं मान लिया है, इस शरीर को मैं मान लिया है, इस मन को मैं मान लिया है, तब तक परेशानी है। लेकिन जहाँ मेरी पहचान समाप्त हो गई तो इस मिथ्या रूप से कुछ लेना देना नहीं है। मिथ्या रूप है जो भी है। और यहाँ पर एक अजातिवाद का भी आ जाता है, जो वो कहते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, आप क्या जान पाते हो कि कुछ नहीं हो रहा है। उनके उसमें है कि ना तो कुछ विनाश हो रहा है, ना ही कोई सृष्टि हो रही है, ना ही कोई बंधन में है, ना ही कोई मुक्ति ढूंढ रहा है, ना कोई मुक्ति है और ना ही कोई मुक्ति कभी हो सकती है। अब देखो, मैंने इसीलिए बताया, ये पुराने साधक का प्रश्न है तो पुराने साधक के लिए ये बात बताई जा रही है, नए साधक इसको सुन के कन्फ्यूज़ ना हो जाएं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कुछ है ही नहीं, तो इसके बारे में क्या सोचना, बस पहचान छूट गई तो बात समाप्त हो गई। तो यहाँ पे अगर हम ज्ञान की दृष्टि से इस प्रश्न को देखें तो ये बोलेंगे कि जब पहचान छूट गई, जब बात समाप्त हो गई, तुम वो हो ही नहीं जो ये शरीर है, जो भी जो इसके जन्म हो, चाहे वो किसी भी योनि में ले, तो जब बात ही ख़त्म हो गई तो फिर क्यों उसके बारे में सोचना है, तुम्हें क्या उस चीज़ को नकारना है, कुछ नकारने वाला कुछ है ही नहीं, है ना, कुछ नकारने को है ही नहीं। नकारा तो तब जाएगा ना जब कुछ है। वो कहते हैं मिथ्या है, मिथ्या को तुम क्यों नकारना चाह रहे हो, तुम मिथ्या को नकारने की कोशिश में और मिथ्या जो है तुम जनरेट कर रहे हो, तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने आगे जैसे प्रश्न में लिखा है कि एज ऑफ टुडे आई डोंट डिज़ायर एनीथिंग बट अ डिज़ायर हिडन डीप इन माय सबकॉन्शियस माइंड विल इट फोर्स मी टू कंटिन्यू इन द वर्ल्ड। व्हाट इज मेंट हियर इज कि अगर मुझे इस संसार में कंटिन्यू करना पड़ा, शायद इस जन्म में तो चल ही रहा है, क्या दोबारा भी आना हो सकता है उस पुरानी इच्छा के कारण, उस पुरानी वासना के कारण जिसका मुझे नहीं पता है? तो फिर से ज्ञान मार्ग की दृष्टि से गॉडपाद क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे वो सब मिथ्या है। अगर तुम आ भी गए तो अगर तुम्हारी पहचान टूट चुकी है तो तुम मिथ्या से क्यों घबरा रहे हो, सब मिथ्या है, क्यों घबराते हो, बात ही नहीं है। तो देखो, ज्ञान के स्तर पर ये सवाल पूछना भी अज्ञानी हो जाता है, अज्ञान हो जाता है। वो कहते हैं ये सब बातें तो तब हैं जब कुछ हो, जब मिथ्या है तो ये सवाल ही कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है ये सवाल, आना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। पर फिर भी मैं खुद भी एक साधक हूँ, मैं जानती हूँ ये प्रश्न, जैसे मैंने बोला, आना बड़ा स्वाभाविक है। तो इसको अगर हम एक दूसरे स्तर से देखें, ठीक है, दूसरे स्तर से, क्योंकि अभी क्या है, ठीक है, हमने जान भी लिया कि ये मिथ्या है, लेकिन इस मिथ्या में भी दर्द तो है, दर्द तो होता है। और इतना संसार का ये जो पूरा खेल चल रहा है ये इतना बेमतलब हो जाता है कि आप इसमें कंटिन्यू करना ही नहीं चाहते हो, आपको लगता है ये सब बेकार है, अभी क्यों कंटिन्यू करना है, चलो इस जन्म में तो चलता रहेगा, आगे तो मुझे नहीं लेने ना। और हम ऐसा बोलते भी हैं कि साधना का एक जो लक्ष्य होता है वो ये भी होता है कि हम इस जन्म मृत्यु के जो चक्र है इससे बाहर आ जाएं, इस मिथ्या रूप में भी ना फंसे, है ना। वो एक आ जाता है वो चीज़। तो अगर वो चीज़ है तो हम उसके लिए क्या करें? तो देखो, उसमें अगर हम योग में जाएंगे, अब हम योग की बात करें, तो अब कैसे जाना कि मेरी इस जन्म की वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं? आपने कैसे जाना? जब आपने अपने मन को देखा, जब आप अपने मन के साक्षी हुए, तो मन के साक्षित्व में आपको ये समझ में आया कि मेरी अब कोई वासना नहीं बची है। ठीक है, इतना हो जाता है। अब बात आ रही है कि क्या पुरानी वासनाएं होंगी? हो सकती हैं। अब वो कहाँ पे हैं? जिसको हम बोलते हैं संचित कर्म, है ना, ये बोलते हैं। जो वासनाएं हैं वो कैसे बनती हैं? वासना से कर्म बनते हैं, कर्म से वासनाएं बनती हैं, और ये चक्र चलता रहता है। अब प्लीज़ ये समझ लीजिए, अब हम दूसरे स्तर की बात कर रहे हैं, अब हम पहले स्तर की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरी इस जन्म की वासनाएं हैं वो तो मुझे पता लगी मन के स्तर पे, तो पुरानी जो वासनाएं हैं वो कहाँ हैं? वो हो जाती हैं कारण शरीर में। देखो, मन होता है सूक्ष्म शरीर, तो मन का जो भी हम जान सकते हैं सूक्ष्म शरीर पे, जब हम साक्षी हो जाते हैं सूक्ष्म के, तो हम इस जन्म का जान सकते हैं। पर अगर हम कारण के साक्षी हो जाएं, क्योंकि कारण जो है वो हमारा स्टोर हाउस है, और कारण शरीर तब हमें पता पड़ सकता है, कब साक्षी हो सकते हैं? कारण शरीर हमारा होता है निद्रा के वक्त, जब हम सोए हुए होते हैं, निद्रा के वक्त हमारा कारण शरीर एक्टिव होता है। तो साक्षी की साधना करते हुए, देखो साधना के भी बहुत सारे स्तर हैं, और प्लीज़ फिर से मैं बार बार बोल रही हूँ कि नए साधक इससे बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं, ये मत सोचे बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ चर्चा का विषय है, इसलिए जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत लंबी चौड़ी अलग तरह से करनी पड़ती है। आप ये मत सोचने बैठ जाना, अरे इतना सब कुछ करना है, हमने तो अभी शुरू किया है, हमसे तो होगा नहीं, ऐसा कुछ मत सोचना। ठीक है, आपके लिए बस जो है आपको अभी अपनी साधना करनी है। तो हम कैसे करेंगे कि हमने पहले साधना की, जैसे हम क्रिया योग करते हैं, हम एक घंटा बैठते हैं, साधना करते हैं, हमारा जो भी प्रोसेस है उसको करने के बाद क्या होता है, क्रिया करते करते आपका, क्रिया आपको जो अनुभव देती है उसमें आपको साक्षी का अनुभव हो जाता है, आप साक्षित्व में उतर जाते हैं, आप अपने आप को पाते हैं उस क्रिया के द्वारा कि आप अलग हैं, और ये जो चल रहा है, ये जो संसार चल रहा है, ये जो शरीर है, ये यहाँ पर जो भी नज़र आ रहा है वो अलग है, आप अलग हो जाते हैं, वो अलग हो जाता है, फिर आप उसमें रहते हैं, और उससे आपकी जो एक घंटे की पहले जो साधना थी वो बढ़नी शुरू हो जाती है, वो बढ़ते 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 बढ़ते, क्योंकि जो साक्षी है उसके लिए आपको स्पेशली एक घंटा बैठने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप साक्षी में स्थित हो गए तो फिर क्या होगा, वो आपका समय अपने आप बढ़ता जाएगा। अभी सेशन सुन रहे हैं तो भी आप साक्षी हैं, खाना खा रहे हैं तो भी साक्षी हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं तो भी साक्षी हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं वो साक्षी भी चल रहा है, और वो साक्षी देख पाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला, इन्होंने कैसे जाना कि मैं इस जन्म की मेरी कोई भी वासनाएं नहीं बची हैं, उस साक्षी भाव में ही ये जाना जाता है, क्योंकि आप देख पाते हो अपने मन का, पूरी तरह से चेक कर पाते हो कि हाँ कुछ वासना नहीं है। फिर यही साक्षी भाव आपका जाता है अगला स्वप्न अवस्था में, कि जब स्वप्न आप देख रहे हो और तब भी आप साक्षी हो। तब आप साक्षी कैसे हो सकते हो कि स्वप्न अवस्था में आपको ये पूरा आभास रहता है कि ये स्वप्न चल रहा है। ज़्यादातर हम सबका अनुभव क्या होता है कि स्वप्न में हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, हमें तो ये भी नहीं याद रहता कि मैं किस घर में हूँ, क्या हूँ, हम सबको पता है, हम सबका अनुभव है, स्वप्न में कुछ भी चल रहा होता है और हम उसी को सत्य मान लेते हैं। लेकिन अगर हम उस समय ये हमें आभास हो जाए कि ये स्वप्न चल रहा है, तो आप साक्षी में आ जाते हैं, फिर आप देख पाते हैं कि स्वप्न में क्या चल रहा है, और स्वप्न में भी हमें अपनी वासनाओं के बारे में पता पड़ता है, कैसे स्वप्न आते हैं उससे हमारी वासनाओं के बारे में कुछ हमें ज्ञान मिलता है। फिर होता है अगला लेवल क्या होता है कि जब निद्रा के वक्त आप सोए हुए हैं, आप कौन सोए हुए हैं, शरीर सोया हुआ है, मन सोया हुआ है, लेकिन आप जगे हो। और फिर आप उस समय किस उसमें हो, वो उस समय कारण शरीर काम कर रहा होता है। सोते हुए भी ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इट्स अ कंप्लीट फुल स्टॉप, कोई अनुभव नहीं है। कारण शरीर के समय में क्या हो रहा है, आपका वहाँ पे जो है वो है जिसको हम बोलेंगे हमारा फाउंडेशन, हमारा स्टोर हाउस, जहाँ पे सारे जन्मों की वासनाएं आपको नज़र आएंगी। तो अगर हम निद्रा के वक्त भी साक्षी हो जाएं, तो आप देख पाओगे कि पुराना जो है कुछ बचा हुआ है वासना का कि नहीं बचा हुआ, और वहाँ से उस पर फिर कार्य अगर करना है तो किया जा सकता है। और अब जो मैं शेयर कर रही हूँ, देखो ये मेरा अपना अनुभव नहीं है, ये जो मैंने गुरुओं से सुना है, अपने भी गुरु से सुना है और भी जो सुना है, मैं उसी की आगे बात बता रही हूँ कि ऐसा भी बोलते हैं कि आप चाहो तो, जैसे इन्होंने बोला कि मेरे इस जन्म की वासनाएं समाप्त हो गई हैं, तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि हमारा हर जन्म में एक अलॉटेड होता है। ये सब थ्योरी है, देखो ये मेरे लिए भी थ्योरी है, मैं पहले इसलिए डिस्क्लेमर दे रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कितना सत्य है, ये मैं सुनी सुनाई आपको बात बता रही हूँ कि हमारा जो अलॉटेड वो था वो पूरा हो गया, अब पुराना है तो हम वो आगे क्यू में आगे आ जाता है, उसको हम ला सकते हैं। कई बार आप लोगों ने ऐसा भी सुना होगा कि कई साधकों की जो लाइफ होती है उसमें बहुत सारे ये नकारात्मक चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत परेशानियाँ आ जाती हैं एकदम से। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी बता दूँ, अगर आपकी लाइफ में नकारात्मक चीज़ें चल रही हैं तो ये मत समझ लेना कि पुराने जन्मों की वासनाएं आ गई हैं। हम ना यहाँ पे चीज़ों को बहुत अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल अलग बात कर रही हूँ कि अगर आपकी इस जन्म की वासनाएं सब समाप्त हो चुकी हैं, आप सच में पूरी तरह से साक्षी में हैं, तो ऐसा भी बोलते हैं कि होता है कि पुराना जो है फिर इसी जन्म में आना शुरू हो जाता है, तो वो फास्ट ट्रैक होना शुरू हो जाता है, वो फास्ट फॉरवर्ड होना शुरू हो जाता है। तो फिर आप उन वासनाओं को, और क्या करना है, कुछ पूरा नहीं करना होता। अगर आप समझ गए हैं कि ये कुछ नहीं है तो बस आपको वो भी सिर्फ देखना है साक्षी में, वो जो भी वासनाएं वो पूरी होती हैं, जो आपको कुछ लेन देन जो भी मिलना है, कुछ होना है आपके साथ, वो सब, और आप साक्षी भाव में रहिए, वो सब समाप्त हो जाएगा, तो ऐसा बोला जाता है। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमने इसका दो स्तर पे इसका उत्तर लिया। पहला कि कुछ नहीं है, ज्ञान मार्ग की दृष्टि से देखें तो कुछ भी नहीं है, सब मिथ्या है, सिर्फ पहचान तोड़नी है। एक बार पहचान समाप्त हो गई तो ठीक है, जो हो रहा है होने दो, उसको बस स्वीकार करना है, वो अपने आप ही जितना चलना है चलने दो उसको, ठीक है ना। दूसरे लेवल पे हमने क्या बात की कि अगर मुझे जानना है कि क्या है मेरा पुराना, तो हम क्या बात करते हैं, हम बोल देते हैं कि ठीक है, फिर हमें उस कारण शरीर का अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि कारण शरीर में वो वासनाएं होंगी जो हमारा ब्लूप्रिंट है इस लाइफ का, या हमारे लाइफ टाइम्स का ब्लूप्रिंट, वहाँ पे हम देख सकते हैं और फिर हम उस पर कार्य कर सकते हैं। एक और चीज़, जैसे हम जीव हैं और हमें ये लगता है कि हमें कुछ करना होगा, जब तक ये कहीं ना कहीं तो ये रहता है ना कि मैं कुछ कर लूँ, मुझे कुछ करना है, तो उसमें एक और चीज़ जो कुछ कुछ प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं, जैसे हम लोग भी बहुत बार करते हैं, एक होता है फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, कि जो भी हमारी वासना या जो हमारे कोई बंधन अगर हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, वो कहीं ना कहीं दूसरों से ही रिलेटेड और कनेक्टेड होते हैं। कभी हमें किसी दूसरे ने दुख दिया होगा, शायद इस जन्म का हमने क्लियर कर दिया, क्या पता पिछले जन्म में किसी को हमने दुख दिया होगा, उन्होंने हमें दुख दिया होगा, तो वो हर स्मृति जहाँ पर मैंने सोचा था ये मैंने किया या ये मेरे साथ हुआ, वो ही बंधन बनकर हमारी स्मृति में रहती है, वो स्मृति में एक हमारा स्टोर हाउस होता है। तो उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्षमा के द्वारा, फॉरगिवनेस। तो हम जो फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत बार आपको फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी मिल जाएगा, मेरे उस पर भी है, कराया भी हुआ है, कि हम अनकंडीशनली सबको माफ़ करते हैं, कि हमने जाने अनजाने में डर के कारण, लोभ के कारण, भय के कारण किसी को भी दुख पहुंचाया हो, तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूं। और अगर किसी और ने भी, देखो किसी ने भी जो मेरे साथ बुरा किया वो क्यों किया होगा, या भय के कारण या लोभ के कारण, ज़्यादातर यही कारण होते हैं, भय से या लोभ से। तो मैं भी उन सबको अनकंडीशनली, अब हम कोई ट्रैक नहीं रख रहे हैं कि किसी ने मेरे साथ ये किया था मुझे उससे बदला लेना है, या मैंने किसी का भला किया था मुझे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, नहीं। अब हम वो पूरी की पूरी बैलेंस शीट को एक ही बार में क्लीन कर रहे हैं। हो सकता है मैंने किसी सबके बहुत अच्छे किए हुए हों, हो सकता है किसी ने मेरे बहुत बुरे किए हुए हों, हम उसमें जा ही नहीं रहे। हम पूरा जो भी कुछ हुआ हो हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते हैं, अनकंडीशनली पूरा फॉरगिवनेस, कि ऑल फॉरगिवन, वो हम क्लियर करते हैं। एक और प्रार्थना जो हम करते हैं, वो भी मैंने पहले कराई हुई है, वो प्रार्थना भी हम रोज़ कर सकते हैं अपने गुरुओं से, अपने इष्ट से, गुरुक्षेत्र से, कि मुझे नहीं याद मैंने कौन कौन सी वासना पिछले जन्मों में की होगी, अगर वो पिछले जन्म थे तो मैंने वो वासना की होगी, मुझे याद नहीं है, लेकिन अब मैं उनसे बंधन मुक्त होना चाहती हूँ, मुझे अब मुक्ति चाहिए। तो फिर से अनकंडीशनली जो भी वासना की हो, कुछ भी किया हो, तो वो मुझे उससे अब मैं फ्री होना चाहती हूँ, मेरी वो हटा दीजिए, उसको पूरा कर दीजिए या उसको हटा दीजिए। और हम सब जानते हैं कि जब महावतार बाबा जी ने लहरी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी थी वहाँ दुनागिरी की गुफा में, उन्होंने वहाँ पर उनके लिए सोने का महल खड़ा कर दिया था। और वो क्या थी, वो लहरी महाशय की पता नहीं कौन से जन्म की इच्छा थी, कौन से जन्म की इच्छा उनके मन में पड़ी हुई थी कि वो कभी एक सोने के महल में रहें, जबकि अभी तो उनको याद भी नहीं था। अगर हम इस एंगल से देखें तो ये प्रश्न बहुत ही सुंदर है कि हाँ उन्होंने भी, और बाबा जी, उनको नहीं याद था कि मेरी वो इच्छा थी, लेकिन बाबा जी को पता था कि हाँ इसकी ये इच्छा थी, और क्योंकि अब इसको सब इच्छाओं से फ्री करना है, इसको आगे करना है, तो उन्होंने उसके लिए महल भी बना दिया। तो जो गुरु हैं, ऐसे गुरु, इतने बड़े जब आपको ऐसे वाले गुरु मिल जाते हैं तो वो ये भी करते हैं ताकि आपकी वासनाएं पूरी हो जाएं। और ऐसे बहुत सारे हमारे पास और भी उदाहरण है, योग मार्ग में, तंत्र मार्ग में यही किया जाता है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा भी कर दिया जाता है, हटा भी दिया जाता है और पूरा भी कर दिया जाता है, उनसे आपको फ्री भी कर दिया जाता है। तो इसलिए आप ये तीन चार चीज़ें जो हैं, फॉरगिवनेस एक्सरसाइज आप कर सकते हो, आप अपने आप ही एक जो है माफ़ी मांग सकते हो कि मैंने जो भी वासनाएं थी, गुरुओं को प्रार्थना कर सकते हो कि आप मुझे उनसे आप मुक्त कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, और छोड़ दीजिए। और ये सब देखो हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे हाथ में नहीं है, है ना। तो ये कर देंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, उसके बाद जो होना है ठीक है, अब गुरुक्षेत्र की कृपा है तो मिथ्या, अब हम इसको मिथ्या मान के चलेंगे, और मैं जो हूँ, मेरा जो असली स्वरूप है उसमें स्थित रहना है और साक्षी भाव में रहना है, फिर वही बात आ जाती है। दो प्रश्न और आए थे, मैं उसको भी ले लेती हूँ, कि इज देयर अ नीड टू रिमेंबर, इफ येस देन वाई, स्वाति का क्वेश्चन था ये, इज देयर अ नीड टू रिमेंबर, नो, इफ यू डोंट वॉन्ट टू रिमेंबर देर इज नो नीड, देर इज नो नीड टू रिमेंबर कि मेरी कौन सी वासना थी। जो हमने पहला वाला स्वाति, जो मैंने सबसे पहले बताया कि अगर हम ज्ञान की दृष्टि से देखें तो कुछ नहीं है, एक बार आइडेंटिफिकेशन टूट गया तो जो भी वासना है वो वासना भी मेरी नहीं है, वो वासना भी प्रकृति में है, वो वासना भी क्षेत्र की है, तो कुछ नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी साधक के मन में ये प्रश्न आ गया है तो उसके उत्तर तो मैं दे ही चुकी हूँ, है ना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लियर हो वैसे ही कि ठीक है जो चल रहा है, और अगर दोबारा मनुष्य योनि में आ भी गए, अगर हो भी रहा है तो होने दो, मतलब आपको सब कुछ स्वीकार है, आप पूरी तरह से उस स्वीकार भाव में हैं, तो छोड़ दीजिए। फिर इनका दूसरा प्रश्न था, हाउ कैन वन बी श्योर दैट इट्स पास्ट लाइफ, इट कैन बी प्रेजेंट ऑल्सो, यस एब्सोल्युटली, ये श्योरिटी हम नहीं लगा सकते कि वो पास्ट लाइफ का है, प्रेजेंट लाइफ का है। देखो ये सब मैंने जैसे बोला ना, ये भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये थ्योरीज हैं। अब जैसे हम एक स्वप्न देखते हैं, जब हम स्वप्न में होते हैं तो हमें बिल्कुल भी ये आभास नहीं होता कि हम इस समय एक स्वप्न देख रहे हैं, बिल्कुल भी, हमें सब कुछ रियल लगता है। वो तो जब हम उठ जाते हैं उसके बाद हमें ये ध्यान आता है कि अरे वो सपना था, लेकिन जब हम उठ जाते हैं तो हमें सिर्फ कल का ही स्वप्न याद नहीं होता, हमें पुराने भी स्वप्न याद होते हैं कि कि जो एक बार देखा, मे बी दो रात पहले आया होगा, या कोई कोई स्वप्न हमारे ऐसे होते हैं जो हमें कुछ साल पहले आए होते हैं लेकिन हमें याद रहता है कि अरे मैं जब छोटी थी तो मैंने ऐसा सपना देखा था, या जब 10 साल पहले कुछ हुआ था तो मुझे ऐसा स्वप्न आया था। कुछ स्वप्न बहुत हमारी स्मृति पे इस तरह का एक इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं, रह जाता है उसके ऊपर। तो जैसे हम उनको याद कर पाते हैं, ऐसे ही देखो जब हम नींद से उठते हैं, मृत्यु क्या है, मृत्यु भी जिसको है वो एक तरह की नींद ही है, एक नींद है। हम फ़र्क क्या है, यहाँ पर हम रोज़ सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हमारी जो स्मृति है वो इंटैक्ट होती है, वही सब चल रहा होता है, हमें पता होता है मेरा नाम क्या है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा घर है, और वहीं से कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। तो हमें क्या लग रहा है कि हाँ बस यही है। मृत्यु के समय वो जो कंटिन्यूटी है वो समाप्त हो जाती है। तो अब वो जो कंटिन्यूटी समाप्त हो गई उसको हम इसलिए बोल देते हैं कि पास्ट लाइफ। इन अ वे इवन यस्टरडे, कल का जो दिन था, अगर हम एक और दृष्टि से देखें, वो भी पास्ट लाइफ ही था। और कभी कभी मुझे तो सच में ऐसा लगता है जब मैं सोचती हूँ कि मैं पूना में भी इस घर में रहती हूँ जो इससे पहले जिस घर में रहती थी 15 साल पहले, मुझे कभी कभी वो भी पुराने जन्म जैसा ही लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं कब ऐसा था, कब ऐसे रहते थे, या जब मैं छोटी थी वो भी पुराने जन्म जैसा ही लगता है। जब भी गैप आ जाता है तो ये सिर्फ एक, ये हमने नाम दे दिए हैं, हमने उनको कैटेगरीज दे दी हैं, लेकिन है क्या, सिर्फ हमारे अनुभवों का एक श्रृंखला है, अनुभवों की श्रृंखला है बस, और कुछ नहीं है। तो उन अनुभवों में हाँ हमारी, और अनुभव कैसे होते हैं, हम ये जो खेल खेल रहे हैं वो किसके कारण खेलते हैं, वासनाओं के कारण खेलते हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि वो पुराने जन्म का हो, ये सिर्फ हमारी मर्जी है। हम चाहें जो एक कैटेगराइजेशन की गई है उसमें हम उसको पास्ट लाइफ भी बोल सकते हैं और वो प्रेजेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है यहाँ पर।